लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि आधुनिक प्रकार की दास्ता अर्थात मानव तस्करी का उन्मूलन हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा, अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी, तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया, पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी, तेरा मार्ग समुद्र से होकर जाता था, गहरे सागर से होकर तेरा पथ जाता था, तेरे पथ चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 77वें भजन के अंतिम 6 पद, जिनकी व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 77वें भजन का रचयिता घोषित करता है कि प्रभु ईश्वर पवित्र हैं, वे पापी और नश्वर मनुष्यों से बिल्कुल अलग हैं, जो अपने महान कार्यों को मनुष्यों के जीवन में ही प्रकट कर देते हैं। ईश्वर अनंत हैं, वे आदि से अनादि तक एक जैसे बने रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं। 77वें भजन के रचयिता में इस तथ्य के प्रति चेतना जागृत होती है कि ईश्वर के समक्ष वह एक महत्वहीन प्राणी है, तथापि ईश्वर के लिए उसका महत्व है। हालांकि वह छोटा है, हालांकि गौण है, प्रभु ईश्वर उसकी सुधि लेते हैं। उसे इस बात की अनुभूति होती है कि ईश्वर उसके लिए उत्कंठित रहा करते हैं। वह सृष्टि के आरंभ से लेकर इसराइली जाति के निर्गमन और उनके उद्धार की कहानी में प्रभु के कार्यों की याद करता है। वह याद करता है कि किस तरह प्रभु ने ब्रह्मांड के अंधकार, उसके उजाड़ और कोलाहल से सृष्टि की रचना की थी। फिर वह याद करता है कि मिस्र की गुलामी से प्रतिज्ञात देश की ओर जाती इसराइली जाति की जटिल यात्रा में ईश्वर अनवरत उसके साथ रहे थे। इस तरह 77वें भजन का रचयिता ईश प्रजा की ऐतिहासिक घटनाओं को याद कर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता है। यह भजन हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराता है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मनुष्य अपने जीवन में संपादित घटनाओं का स्मरण कर ईश्वर का ध्यान करता तथा अपनी मुक्ति के लिए उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है।
Ah धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 78वें भजन का अवलोकन करें। इस भजन के प्रथम चार पद इस प्रकार हैं: मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख्य शब्द कान लगाकर सुनो, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, हम यह उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे, हम यह आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। प्रभु की महिमा, प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु द्वारा किए गए चमत्कार। श्रोताओं, बाइबल आचार्यों ने 78वें भजन को एक उपदेश की संज्ञा प्रदान की है। ऐसा उपदेश जिसमें उपदेशक मंदिर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर उनसे कहता है कि जो कुछ उसने अपने पूर्वजों से सुना है वह ऐसा रहस्य है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। उसने अपने पूर्वजों से ईश्वर के महान कार्यों के बारे में सुना था और चाहता था कि उसकी संतति और भावी पीढ़ियां भी उन्हें जाने। वह अपनी बात दृष्टांतों में रखना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने भी दृष्टांतों में शिक्षा दी थी। श्रोताओं, वस्तुतः दृष्टांत शब्द का अर्थ होता है मिसाल, और इब्रानी या हिब्रू भाषा में इसके लिए मशाल शब्द प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में ऐसी शिक्षा जो ग्राहक अपने मन की आंखों से देख सकता था उसे मशाल कहा जाता था। सरल शब्दों में हम इसे उदाहरण कह सकते हैं। अन्यों के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। इस संदर्भ में 78वें भजन का उपदेशक कहता है, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। इस स्थल पर इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित कराना हितकर होगा कि संभवतः उस युग में आप बीती घटनाओं को अन्यों तक प्रसारित करने का तरीका केवल मुख का शब्द था, और उपदेशक चाहता था कि उसने जो कुछ अपने पूर्वजों से सुना और सीखा था वह आने वाली पीढ़ियां भी सुने और सीखें। उसने उनसे प्रभु की महिमा, प्रभु के सामर्थ्य और उनके द्वारा संपादित चमत्कारों के विषय में सुना था, और अब चाहता था कि वर्तमान और भावी पीढ़ियां भी उन चमत्कारों का ज्ञान प्राप्त करें। सच ही तो है, यदि हम प्राप्त शिक्षा को अपने तक ही रखें, उसे अन्यों तक प्रसारित न करें, तो हमारी शिक्षा और हमारे कार्यों का कोई महत्व नहीं होगा। अस्तु, ईश्वर को हम जाने और अन्यों को उनके बारे में आलोकित करें। इस तथ्य पर गौर करें कि 78वें भजन का उपदेशक मंदिर में एकत्र भक्तों को उपदेश दे रहा था। वह इसराइल के इतिहास में संपादित घटनाओं के बारे में बता रहा था। कुछ लोगों ने ध्यानपूर्वक उसके उपदेश को सुना होगा, और कुछ लोग मंदिर में उपस्थित रहने के बावजूद उसके उपदेश पर ध्यान नहीं लगा पाए होंगे। आज भी यही हो रहा है। हम गिरजाघरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, धर्म विधियों में भाग लेते हैं, पुरोहित को प्रवचन करते सुनते हैं, किंतु प्रायः उस पर ध्यान नहीं लगाते। 78वें भजन का उपदेशक इसी बात की ओर संकेत देता है, इसी बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है कि उपदेशक का कार्य ईश्वर के महान कार्यों का बखान करना होता है। उसका कार्य प्रचार करना, शिक्षा देना तथा परामर्श प्रदान करना होता है। इसीलिए भजन के 5वें और 6वें पदों में कहता है, उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इसराइल के लिए एक विधान निर्धारित किया, उसने हमारे पूर्वजों को यह आज्ञा दी कि वे उसे अपने पुत्रों को सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र उसे जान जाएं, और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताएं। अस्तु श्रोताओं, यह उचित ही है कि हम प्रभु के कार्यों के बारे में बताने वाले की बात ध्यान पूर्वक सुनें और ईश्वर को उनके महान कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया करें।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान। धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। मेरी दशा देख अन्यायी, शत्रु न हंसने पाए। मेरी दशा देख अन्यायी, शत्रु न हंसने पाए। और कटाक्ष अकारण कर वे घृणा न करने पाए, क्योंकि नहीं लगती है उनको भली शांति चर्चाएं। शांत स्वदेशवासियों के प्रति वे करते छल छंद विधान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। सचेत हो मेरे प्रभुवर, मेरी रक्षा को तैयार। उठ सचेत हो मेरे प्रभुवर, मेरी रक्षा को तैयार। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार। मुझे नाथ निर्दोष सिद्ध कर न्याय नीत अनुसार।